समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और डेडलाइन में बात करेंगे हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक नमस्कार।
Hello Vinay, hello and good afternoon. You are tuned to Parikrama 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Vinay Saxena. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning in full swing for third phase of Lok Sabha elections with top leaders of major political parties, making strong pitch to voters.
दूसरे चरण में मतदान के साथ 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न।
मैसिव फॉरेस्ट फायर रेजेस इन उत्तराखंड, इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड टू डाउज द ब्लेज।
भारत ने चीन के शंघाई में विश्व कप तीरंदाजी चरण एक में 3 स्वर्ण पदक जीतकर कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में क्लीन स्वीप किया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट मैच बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस इज अंडरवे इन दिल्ली। Later this evening, Lucknow Super Giants to lock horns with the Rajasthan Royals in Lucknow. And now, Vinay, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Veterinary Day. Well, Vinay, World Veterinary Day, WVD, is celebrated every year on the last Saturday of April. And this day is dedicated to recognize the efforts of veterinarians all over the world. And it is an opportunity to highlight the importance of veterinarians in maintaining the health and welfare of animals and humans. The World Veterinary Day has a broader significance of promoting animal welfare worldwide. And like we said, we are celebrating the World Veterinary Day today, which is an annual global celebration that honors the invaluable contributions of veterinarians to society. This day aims to raise awareness about the crucial role they play in maintaining the health of animals. And Vinay, the theme for 2024 is Veterinarians are Essential Health Workers, highlighting the vital role in safeguarding public health and promoting the well-being of animals and the environment.
अभिषेक, जिस तरह नॉर्मल डॉक्टर हमारा इलाज करता है और हमारी रक्षा करता है, उसी तरह से वेटरनरी डॉक्टर जानवरों की और हमारे पर्यावरण की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह दिन वन स्वास्थ्य की अवधारणा में पशु चिकित्सकों के गहन प्रभाव को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर जुड़े डोमेन हैं। जानवरों के कल्याण की रक्षा करना न केवल एक नैतिक दायित्व के रूप में बल्कि मानव कल्याण और हमारे ग्रह के स्थायी भविष्य की आधारशिला के रूप में भी आवश्यक है। इतना ही नहीं बल्कि यह दिन पशु और मानव स्वास्थ्य और कल्याण, खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, पारिस्थितिकी, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, विकास, बायोमेडिकल अनुसंधान, ग्रामीण विकास में शिक्षकों और नीति निर्माताओं दोनों के रूप में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं भी पहचानता और मनाता है। लेकिन अभिषेक, वेटरनरी डॉक्टर कम दिखाई देते हैं और कम पहचान में आते हैं।
एब्सोल्युटली, एंड वेट्स विनय प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस एंड दे ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट वेटरनरी सर्विसेज। And one of the main responsibilities of vets is to identify and respond to disease outbreaks early on. And by doing so, they can limit the effect on both humans and animals. Vets have an essential contribution in the development and advancement of veterinary medicine, which has a crucial impact on human and animal health. And the Department of Animal Husbandry and Dairy, in close collaboration with the Veterinary Council of India, organizes events to celebrate World Veterinary Day. Some important roles that encompass animal and wildlife welfare would include economic development through effective livestock production and management, protection of the environment and biodiversity by local community involvement, and safeguarding our country by preventing the threat of bioterrorism.
जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि और पशुपालन और उससे जुड़े उद्योगों की सुरक्षा और सुधार हमारे देश का केंद्र बिंदु रहा है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमारे संविधान में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुच्छेद भी है कि भारत में मवेशियों को कृषि और पशुपालन के दौरान संभावित वध से बचाया जाए, जो कि अनुच्छेद 48 है। इसका उद्देश्य हमारे देश में कृषि और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देना और सुधार करना है। अभिषेक, बहुत कम लोग इस अनुच्छेद के बारे में जानते हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पशु पक्षियों को बचाना जरूरी है।
एब्सोल्युटली विनय, एंड टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली वी रिलाई ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स एंड वन सच डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग व्हिच इज टास्क्ड विद क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड वेलबींग ऑफ एनिमल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। The department is responsible for matters relating to livestock production, preservation, protection and improvement of stocks, dairy development, matters related to Delhi Mill Scheme, National Dairy Development Board, Animal Welfare Board of India and Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals. And Vinay, let's also talk about the different ways vets contribute to society. Well, they contribute immensely to society. Firstly, they contribute in research and education. Vets engage in research for the benefit of society. The research may be about animals, but are invariably crucial to humans. They assist livestock farms and farmers. Animals serve as sources of food for humans. We consume them as meat and for other purposes. And to the livestock farmer, a vet is a helper. Without the expertise, going into livestock business would have been difficult. And also, vets are invariable in helping society by making sure that food, which is essential to every human, is safe for consumption. Fourthly, vets protect the environment. Animals help to save a planet, so they are vital for a healthy environment. And lastly, Vinay, vets promote public health. So vets get themselves involved in everything that concerns food safety.
Abhishek, जो पशु पक्षी हैं, वो direct और indirect तरीके से हमारे daily routine के जीवन में बहुत अपना कर्तव्य और रोल निभाते हैं। कुछ तो दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है।
एब्सोल्युटली।
इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह पशु चिकित्सा पद्धतियों को विनियमित करने के साथ साथ सभी पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक के माध्यम से पशु चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। देशभर में पशु चिकित्सा संस्थान देशभर में प्रशिक्षित पशु चिकित्सा कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सालय महाविद्यालयों की संख्या अब बढ़कर 55 हो गई है। अभिषेक, 55 हमारे देश के हिसाब से कम नहीं है, और होने चाहिए।
एब्सोल्युटली, इट शुड बी मोर। एंड सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन विनय, द बॉटम लाइन इज वेट्स आर इसेंशियल एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ एनवायरमेंट। बिसाइड्स ट्रीटिंग एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ पेट्स, they also contribute immensely in ensuring public health, food safety and protection of our environment. So veterinarians are important people and should have respect they deserve. So happy World Veterinary Day.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। मध्य प्रदेश में आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में उम्मीद से कम मतदान के बाद अब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने की कवायद और तेज कर दी है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोट जरूरी है विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और 5,000 रूपये से लेकर 51,000 रूपये तक के पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी दो चरणों में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसीलिए ग्वालियर सीट पर चुनावी राहगीरी के नाम से एक अनूठा और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई रंग नजर आए। यहां 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। इसमें बीएसएफ बैंड, ओपन माइक, डांस, लोकगीत, लोक नृत्य से लेकर घरेलू फूड जोन के स्टॉल भी शामिल थे। भोपाल में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदान का महत्व भी समझाया जा रहा है। इसी तरह सीनियर सिटीजन होम के सदस्यों ने भी भी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी दिया। भोपाल में वृद्धजन मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बच्चों द्वारा भी अनूठे आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों बच्चों ने कुछ प्रमुख इलाकों में मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम बनकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। भोपाल के बैरसिया में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में सद्भावना वॉलीबॉल मैच खेला गया। इस दौरान महाविद्यालय की सभी व्याख्याताओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक मैच में भाग लिया और मतदाता जागरूकता को यह मैच समर्पित किया। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दो पहिया चार पहिया वाहन रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के वरिष्ठ नागरिक भी मतदान की लगातार अपील कर रहे हैं। मुरैना में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुरैना करेगा वोट की थीम पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने रैली निकाली। इंदौर के सभी महाविद्यालयों में छात्रों को मतदान के अधिकार का महत्व समझाने के लिए मतदान करने का संकल्प ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए दिलाया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से उम्मीद है कि आने वाले चरणों में हमें और बेहतर मतदान देखने को मिलेगा। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
Odisha continues to reel under intense heat waves as mercury levels soar to over 44 degrees Celsius in some parts of the state. Angul recorded 44.6 degrees Celsius, becoming the fourth hottest place in Asia on Friday. The day temperature in the district was above normal by 4.4 degrees Celsius, and as many as 12 cities in Odisha have recorded more than 43 degrees Celsius, while 32 cities recorded more than 40 degrees Celsius. Met Department said due to prevailing mainly northwesterly dry air and high solar insolation, the day temperature is likely to be above normal by 4 to 6 degrees Celsius over some districts of Odisha during the next 4 to 5 days, and there is no sign of immediate relief. We have more from our Cuttack correspondent Tapan.
The entire region of Odisha is boiling under intense heat wave since last 15 days. Monorama Mahanti, director of IMD Bhuvaneswar, stated that severe heat wave has been prevailing in vast stretches of Odisha over the last 4 to 5 days, and the condition is expected to persist for the next 4 to 5 days. Anugul 44.6, Bodh 44.5, and Balangir recorded 44 degrees Celsius yesterday. Met Department issued red warning to Kendrapada, Bhadrak, Baleshwar, Moyurbhanj, Jharsuguda, Sundargarh, Keunjhar, Dhenkanal, Bodh, Nuapada and Anugul district, and orange warning to 18 districts during 3 days. Seeing the intense of the heat, the government has issued advisory to take precautionary measures for the hot weather while going outside during noon time. In view of prevailing heat weather condition, the government of Odisha has issued an order to close down all schools and declare early summer vacation. On the other hand, the state reported its first sunstroke death of the season in Baleshwar district. The public health director Niranjan Mishra said that 71 individuals had been hospitalized across Odisha due to heat wave related ailments, with Sundargarh reporting the highest number of cases at 35. Special Relief Commissioner SRC has alerted hospitals to give immediate treatment if any patient admits having complaint of histo. Tapan Maharana for Parikrama from Cuttack.
Abhishek, मौसम के स्तर पे तो पारा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के चलते भी पारा बढ़ना शुरू हो रहा है लेकिन वोटर निकल के नहीं आ रहे हैं।
एब्सोल्युटली, सो वी अगेन वंस अगेन अर्ज ऑल आवर लिसनर्स इन ऑल द पोल बाउंड एरियाज टू गो आउट एंड एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज व्हिच इज अ वेरी इसेंशियल राइट व्हिच एवरी सिटीजन शुड एक्सरसाइज। वेल, इन व्यू ऑफ द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन वी प्रेजेंट यू अ कैप्सूल बेस्ड ऑन स्टेट प्रोफाइल गिविंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, डेट ऑफ पोलिंग, नंबर ऑफ सीट्स एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स बाय अवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स।
लोकसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। यहां 7 मई को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
धारवाड़ संसदीय क्षेत्र में डिलिमिटेशन के बाद चौथी बार चुनाव हो रहा है। बीजेपी के मंत्री और 4 बार विधायक रह चुके प्रहलाद जोशी यहां से डिलिमिटेशन के पहले और बाद में 5वीं बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार विनोद असूती अपना पहला चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। इस बार धारवाड़ से 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 6 निर्दलीय हैं। इस क्षेत्र में कुल 18,31,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से पहली बार बार मतदान कर रहे मतदाताओं की संख्या 47,000 के पास है और 85 आयु के ऊपर वाले मतदाताओं की संख्या 18,626 है। इस क्षेत्र में मई 7 को मतदान होगा, जिसके लिए 1,893 मुख्य मतदान केंद्र और 8 अधिकतम मतदान केंद्र खोले गए हैं। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
In a series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring a report on the Raipur seat in Chhattisgarh. Voting in Raipur constituency will be held in the third phase along with 6 other seats of Chhattisgarh on the 7th of May. We have a report from our correspondent Vikalp Shukla.
Total 38 candidates are in the fray from this constituency, including 5 women candidates. The primary contest here is between Bharti Janata Party candidate Brijmohan Agrawal and Congress National Secretary Vikas Upadhyay. Brijmohan Agrawal, a seasoned BJP leader, has consecutively won the Raipur South Assembly seat in the last 8 Assembly elections and currently serves as the School Education Minister of the state. There are more than 23,75,000 voters in this Lok Sabha constituency, out of which about 11,88,000 are females and 11,86,000 are male voters. Raipur holds significant electoral importance, being the capital of Chhattisgarh. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember Mani Bhai Bheem Bhai Desai, who was born on the 27th of April 1920 in Surat, Gujarat. An associate of Mahatma Gandhi, Mani Bhai Desai was imprisoned during the Quit India movement in 1942.
In 1946, Mahatma Gandhi sent Mani Bhai Desai to the Nature Cure Ashram at Uruli Kanchan, situated near Pune. He dedicated himself to rural development based on modern and scientific lines. Desai also promoted many initiatives for the benefit of rural people, including water distribution systems in drought-prone areas, rural school at Uruli Kanchan, with emphasis on vocational training and cooperative joint farming society.
Desai was awarded the Padma Shri by the Government of India. Mani Bhai died on the 14th of November 1993 in Pune. The institutes he established continue to serve the nation and the people. We salute the great Gandhi. Also remember Gandhian freedom fighter Anjana Devi Chaudhary, who passed away on the 27th of April 1981. She, along with her freedom fighter husband Ram Narayan Chaudhary, fought against the feudal policies of the princely states of Rajputana. Through Rajasthan Seva Sangh, founded in 1920, Anjana Devi worked towards advancing the causes of poor farmers and landless laborers. Anjana Devi awakened political consciousness among the women of Mewar and Bundi from 1921 to 1924. She was arrested and exiled from Bundi state. Later, she led a procession of 500 women in Bijolia and got the arrested farmers released. Anjana Devi was imprisoned twice for her participation in national movements from 1932 to 1935. She dedicated herself to the service of Bhils in Dungarpur state in the 1930s and participated in Mahatma Gandhi's programs by staying in Sevagram Ashram from 1939 to 1942. For 5 years, she was busy running the Women's Information Department of the Bharat Sevak Samaj. Throughout her life, she continued to work with a dedicated spirit for public service and nation building. We salute the great daughter of India.
We also remember social reformer T.K. Madhavan, who died on the 27th of April 1930. He was involved with the Sri Narayan Dharma Paripalan (SNDP) movement and was a prominent member of the Temple Entry movement, which fought for the entry of oppressed communities to the temples of Kerala.
He was the original architect behind the Vaikom Satyagraha. The Vaikom Satyagraha is a testament to the importance of the struggle against the aggressive social practices as part of the war against the British colonizers.
Madhavan was born on September 2, 1884 at Karthikapalli, Kerala. He was very active in the social reform movement and in 1915 started the weekly newspaper Deshabhimani. In 1918 he presented a resolution seeking permission of temple entry and right to worship to all people irrespective of caste and community at Shri Moolam Praja Sabha, the Legislative Council of Travancore. The resolution was presented in the Kakinada session of the Indian National Congress in 1923.
In 1924, Vaikom Satyagraha was started under the leadership of Madhavan, K. Kelappan and K. P. Keshav Menon to get the right of oppressed classes to walk along the road in front of Vaikom Mahadev Temple. Madhavan and Keshav Menon were arrested and imprisoned. Finally, the Maharaja of Travancore agreed to open the road to all classes of people. However, he had to continue his struggle for the temple entry. He met Gandhiji at Tirunelveli and persuaded him to visit Vaikom.
Madhavan fought for the rights of people till the very end. We salute the great Indian
temple.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारत के कंपाउंड स्पर्धा में क्लीन स्वीप कर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ज्योति सुरेखा वैनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर की महिला टीम ने फाइनल में इटली को पराजित किया। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की पुरुष टीम ने नीदरलैंड्स को फाइनल में हराया। ज्योति सुरेखा वैनम और अभिषेक वर्मा की मिक्स्ड टीम ने फाइनल में एस्टोनिया को हराकर 3रा स्वर्ण पदक हासिल किया।
And talking about IPL cricket, an IPL cricket match between Delhi Capitals and Mumbai Indians is underway at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. Capitals were 190 for 3 in 15 overs a short while ago. Mumbai won the toss and opted to field first. Currently, Delhi Capitals are on 6th spot with 4 victories out of 9 matches. And Mumbai Indians are on 9th position with 3 wins in 8 matches. In the second match today, Lucknow Super Giants will lock horns with the table toppers Rajasthan Royals at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Lucknow Super Giants are on the 4th place in the table.
और श्रोताओं, बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है। श्रोताओं, सबसे पहले हम याद करेंगे
Ralph Waldo Emerson passed away on this day in 1882. He went by his middle name Waldo. He was an American essayist, lecturer, philosopher, abolitionist and poet who led the transcendentalist movement in the mid-19th century. He was seen as a champion of individualism and critical thinking and a prescient critic of the countervailing pressures of society and conformity. Friedrich Nietzsche thought he was the most gifted of the Americans and Walt Whitman called him his master.
अब हम बात करेंगे उड़िया भाषा के कथाकार मनोज दास की। मनोज दास ने उड़िया और अंग्रेजी भाषा के कहानीकार और साहित्यकार के रूप में लिखा। मनोज दास अंग्रेजी भाषा में लिखते हुए भी उनके साहित्य सृजन का मूल स्रोत अंग्रेजी या विदेशी साहित्य कभी नहीं रहा। वे संस्कृत और उड़िया की लोक कथा, वेद और उपनिषद की भारतीय सांस्कृतिक धारा के प्रवर्तक रहे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मानों से नवाजा गया। उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, सारला सम्मान और विशु सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया।
फिरोज खान पास्ड अवे इन दिस डे इन 2009। बॉर्न जुल्फिकर अली शाह खान इज एन एक्टर, फिल्म एडिटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन इंडियन सिनेमा। He appeared in over 60 films and became one of Bollywood's popular style icons. He won the Filmfare Best Supporting Actor Award for Aadmi aur Insaan in 1970 and was honored with the Filmfare Lifetime Achievement Award in 2000. And Khan has been called the Clint Eastwood of the East. Let's listen into a dialogue of his.
इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ।
इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का।
मजनू, ये मत भूलो, अभी हम जिंदा हैं। उदय, एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसकी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ इस लड़की के आंसू। एक तरफ तुम्हारी बहन की सगाई है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग। इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है।
फिरोज खान ने फिल्मों में एक बहुत लंबी पारी खेली और अलग अलग अंदाज में अलग अलग किरदार निभाए। वे एक सुंदर हीरो की भूमिका में कहीं दिखाई दिए तो वे एक खूंखार विलेन के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत फिल्म दीदी के सबसे करी थी 1960 में। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। लगभग 5 दशक का फिल्मी सफर तय करते हुए फिरोज खान ने 2007 में आखिरी फिल्म द वेलकम की, जिसका भी डायलॉग आपने सुना, जिसमें वो खास अंदाज में पेश आए और उनका नाम आरडीएक्स था। उनकी मुख्य फिल्में थी अपराध, उपासना, मेला, आग और धर्मात्मा और कुर्बानी।
दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी।
आपने ये गाना सुना फिल्म कुर्बानी का, जिसमें फिरोज खान शामिल थे और उसके साथ ही एक और मशहूर कलाकार शामिल थे जिनका नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जिनका जन्म पेशावर में हुआ था और उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से करी थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1971 में आई उनकी फिल्म हम और तुम। उन्होंने भी फिरोज खान की तरह सहायक हीरो की भूमिका निभाई और कई खलनायक के रूप में किरदार भी निभाए। उन्होंने 2 पारियों में अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत रखी थी। 1999 में उनको फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी ज्यादा समय और योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी मुख्य फिल्मों में है दयावान और चांदनी।
Wing Commander Trevor Kilor passed away on this day in 2002. He was an officer of the Indian Air Force who participated in the Indo-Pakistani War of 1965. He was honored with many medals, including the Veer Chakra and the Vayu Sena Medal. He had an elder brother, Denzil, who was also honored for his service in the Indian Air Force. Both brothers have a Veer Chakra for the same feat of shooting down Pakistan Air Force F-86 Sabre fighters. It was the first time 2 brothers had received Veer Chakras for the same reason. And also, Coretta Scott King was born on this day in 1927. She was an American author, activist and civil rights leader, as well as the wife of Martin Luther King Jr. from 1953 until his death. King advocated for African American equality and led the civil rights movement in the 1960s. She was also a singer who often incorporated music into her civil rights work. King met a husband while attending graduate school in Boston. They both became increasingly active in the American civil rights movement.
और अब बात करेंगे हम जोहरा सहगल की। जोहरा सहगल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार थी। जोहरा का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के रामर के रोहिल्ला पठान परिवार में हुआ। उनका असली नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताजुल्ला खान था। थिएटर को अपना पहला प्यार मानने वाली जोहरा ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में करीब 14 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, बैंडेट लाइक बेकहम और चीनी कम जैसी फिल्में शामिल हैं। जोहरा सहगल को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। वे 1935 में नृत्य गुरु उदयशंकर के नृत्य समूह से भी जुड़ी और तंदूरी नाइट्स उनका एक विशेष धारावाहिक माना जाता है। वर्ष 2008 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने लाडली मीडिया अवार्ड से सदी लाडली के रूप में भी नामित किया था।
यस, जोहरा सहगल बिगैन अ करियर एज अ मेंबर ऑफ अ कंटेम्प्रेरी डांस ट्रूप। सी ट्रांजिशन इनटू एक्टिंग रोल स्टार्टिंग इन द 1940s एंड सहगल अपीयर्ड इन सेवरल ब्रिटिश फिल्म्स, टेलीविजन शोज एंड बॉलीवुड प्रोडक्शंस इन अ करियर दैट स्पैन्ड ओवर 8 डेकेड्स। एंड ऑल्सो विनय, Murugadas Arunachalam was born on this day in 1974, known professionally as A.R. Murugadas. He is an Indian film director, producer and screenwriter who predominantly works in the Tamil film industry. He is best known for directing action films, mainly on social issues. In addition, he has worked in Telugu films and Hindi films. Murugadas won the Filmfare Award for Best Director for his 2014 Tamil action drama, Kathi.
और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो हमें इजाजत दीजिए मुझे और अभिषेक मुखोपाध्याय को, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।